नमस्कार आदाब दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपके मोबाइल वाणी पर क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम लेकर, जहां आपको मिलेंगे आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़े सारे अनसुलझे सवालों के जवाब, वो भी आपके चहेते शिक्षक के द्वारा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के साथ।
बच्चों में पप्पू कुमार राय, सहायक प्राध्यापक पीआर कॉलेज सोनपुर। आज हम लोग समाज शास्त्र के 26वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट के बारे में सामाजिक स्थिति को पढ़ना है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में जन्मे और पले बढ़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की वास्तविकता है। हम अपने चारों तरफ कई लोगों को देखते हैं जो भीख मांगते हैं। कई बच्चे स्कूल न जाकर घरेलू नौकर, ढाबे में नौकरी या काम करते हैं। भवन निर्माण इत्यादि के क्षेत्रों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। सड़क किनारे चाय की दुकान पर, होटलों में सफाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह हमें अन्यायिक रूप में महसूस ही नहीं होता कि कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। कुछ बच्चे विद्यालय में जातिगत भेदभाव का शिकार होते हैं। सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का यह रोजमर्रापन, इनका इस प्रकार रोजाना घटित होना इन्हें स्वाभाविक बना देता है। हमें लगने लगता है कि यह एकदम सामान्य बात है। गौर से देखने पर हम यह पाते हैं कि जो लोग समाज के सबसे निम्न जाति के हैं, वही सबसे ज़्यादा परिश्रम भी करते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुँच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। हम देखते हैं कि समाज में निम्न जातियों के पास संसाधनों का घोर अभाव होता है। यह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण भी कहते हैं। इसके मुख्य तीन सिद्धांत हैं। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं, बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। सामाजिक संरचना विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में असमान रूप से बटा होता है, जिसका लोगों की व्यक्तिगत क्षमता से कोई लेना देना नहीं होता है। सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, अर्थात बच्चे अपने माता पिता की सामाजिक स्थिति को पाते हैं। जाति व्यवस्था के अंदर जन्म ही व्यावसायिक स्तरों को निर्धारित करता है। एक दलित पारंपरिक व्यवसाय जैसे खेतिहर, मजदूर, सफाईकर्मी या चाहे चमड़े का काम करने वाला अपने कार्य से ही बंधकर रह जाता है, यानी कि व्यक्ति एक ही व्यवसाय को पीढ़ी दर पीढ़ी करने को बाध्य होता है। सामाजिक स्तरीकरण में विश्वास या विचारधारा को समर्थन मिलता है। जातीय पूर्वाग्रह एक जातीय समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह की जातियों के बारे में पूर्वकल्पित विचार या व्यवहार होता है। पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएँ ज़्यादातर निर्जातीय और प्रजातीय समूहों और महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती हैं। पूर्वाग्रह मनोवृत्ति और विचारों को दर्शाता है। जब एक व्यक्ति को उसके जाति अथवा धर्म के आधार पर नौकरी देने से मना कर दिया जाता है। भारत में सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार चरम रूप में पाया जाता है। जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है, जो विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को न्यायसंगत ठहराती है। अनुसूचित जाति या दलित जाति, यानी वह जाति जिसे अस्पृश्य यानी अछूत मानी जाने वाली जाति कहा जाता है, जाति सोपान में सबसे निम्न स्तर पर होते हैं। इन्हें अपवित्र या अशुद्ध भी माना जाता है। सन 1931 में पहली बार उस समय के जनगणना आयुक्त J.H. हटन ने संपूर्ण भारत के अस्पृश्य जातियों की जनगणना की और बताया कि भारत में 1108 अस्पृश्य जातियां हैं। इन्हीं को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अध्यादेश 1935 के अनुसार इन्हें कुछ सुविधाएँ दी गई। उसी के आधार पर भारत सरकार ने अनुसूचित जाति अध्यादेश में थोड़ा हेर फेर कर अनुसूचित जाति अध्यादेश 1950 में लागू किया, यानी कि आरक्षण का प्रावधान किया। इनको समाज में सामाजिक बहिष्कार कितने भयंकर रूप भुगतने पड़ते हैं जो अन्य समूह को नहीं सहने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, ये समाज के सामान्य कुएं, हैंडपाइप या सामान्य सामाजिक समारोहों में भाग नहीं ले सकते, इन्हें उनसे दूर रहना पड़ता है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य जनजातियों की तरह ही अन्य पिछड़े वर्गों को भी नकारात्मक रूप से परिभाषित किया जाता है। वे न तो जाति क्रम में अग्रणी जातियों के हिस्से हैं, न ही न्यूनतम सोपान पर दलितों के साथ हैं। इन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग दलितों अथवा आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समूह है। अन्य पिछड़ों वर्गों के कल्याण के लिए स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसने 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन उस समय के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा इन वर्गों के कल्याण के लिए पुनः मंडल आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने विभिन्न धर्मों और पंथों के 3743 जातियां यानी कि कुल जनसंख्या के 54% को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा वर्ग घोषित करते हुए 27% आरक्षण की सिफारिश किया। इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। यह सिफारिश भी राजनीतिक कारणों से लागू नहीं हो पाई, लेकिन पुनः 13 अगस्त 1990 को इस रिपोर्ट को उस समय की तत्कालीन भारत सरकार ने लागू करने की घोषणा की। बच्चों, इस प्रकार हम समाज की सामाजिक भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समझ सके। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।